ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। चुनावी वातावरण बनाने और शांति सुरक्षा की अनुभूति दिलाने के लिए विशेष रणनीतिक योजना के साथ आगे बढ़ने का केंद्रीय सुरक्षा समिति का निर्णय। 14 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में स्वास्थ्य सेवा विभाग की तत्कालीन महानिदेशक डॉ संगीता कौशल मिश्रा समेत 14 लोगों के विरूद्व अख्तियार ने विशेष अदालत में किया मुकदमा दर्ज। कैलाली के धोवेनी नहर में शवयात्रियों को ले जा रहे ट्रैक्टर की दुर्घटना में 3 लोगों की हुई मौत और युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोप में इसराइली सेना ने हमास पर किया हमला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक ने चुनाव का वातावरण बनाने और शांति सुरक्षा की अनुभूति दिलाने के लिए विशेष रणनीतिक योजना के साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अरियाल की अध्यक्षता में आज हुई समिति की बैठक ने चुनाव को लेकर शांति सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए माथहत के सभी निकायों को परिचालित करने का निर्णय किया है। गृहमंत्री अरियाल ने कहा कि जेन जेड आंदोलन के क्रम में लूटे हुए करीब 400 हथियार रिकवर होने बाकी हैं और चुनाव से पहले पुलिस के हथियार रिकवर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भागे हुए कैदी बंदियों को वापस लाने के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम लाए जाएंगे और इसी मुताबिक निर्देश किए जाएंगे। बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा समिति में नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रीय अनुसंधान के प्रमुख, गृह सचिव और रक्षा सचिव शामिल होते हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय ने शांति सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, सुशासन और प्रभावकारी सेवा प्रवाह, अनुगमन लगायत के संबंध में देशभर के जिला प्रशासन कार्यालयों को निर्देश किया है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने स्वास्थ्य सेवा विभाग की तत्कालीन महानिदेशक डॉ संगीता कौशल मिश्रा सहित 14 लोगों के विरूद्व भ्रष्टाचार के आरोप में आज विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। उन पर विभाग के लिए मेमोग्राफी मशीन खरीद के क्रम में झूठा विवरण वाला बिल पेश कर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। आरोप पत्र में उन पर प्रति व्यक्ति 14,06,00,000 रूपये से अधिक क्लेम्ड अमाउंट का दावा करते हुए सजा की मांग की गई है। मुगलिन पोखरा सड़क परियोजना अंतर्गत पश्चिम खंड में अब तक करीब 61% सड़क निर्माण पूरा हुआ है। बरसात के कारण कुछ महीने काम सुस्त गति से चलने के बाद अब दीपावली लगातार त्योहारों के बाद काम तेजी से होगा। ये बात पश्चिम खंड कार्यालय के सूचना अधिकारी इंजीनियर अनंत बराल ने बताई। उन्होंने बताया कि अगले एक महीने में 4 लेन सड़क पिच करने की तैयारी हो रही है। कैलाली जिले की लमकीचुवा नगरपालिका अंतर्गत धोबिनी शहर में शवयात्री सवार ट्रैक्टर की हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य 12 लोग घायल हो गए। बर्दगोरिया गांवपालिका वार्ड नंबर 4 से चिसापानी की तरफ जा रहा ट्रैक्टर आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में बर्दगोरिया गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के 64 वर्षीय दान बहादुर साउद, 36 वर्षीय हर्क साउद और 16 वर्षीय शीतल साउद की मौत होने की जानकारी पुलिस ने दी। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि जेन जेड के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ धोखेबाजी कर उसे विध्वंस की ओर ढकेला गया। आज काठमांडू में विभिन्न मीडिया के संपादकों के साथ बातचीत में अध्यक्ष ओली ने कहा कि भ्रष्टाचार का अंत, सुशासन और सामाजिक संजालों को खुला करने की मांग के साथ हुए जेन जेड के प्रदर्शन को आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ की ओर ढकेला गया। उन्होंने कहा कि असली जेन जेड प्रदर्शनकारी लौटे, लेकिन कुछ अराजक तत्व योजनाबद्ध रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की तरफ गए। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि आगे बढ़ती भीड़ को रोकने की पर्याप्त तैयारी नहीं थी। अध्यक्ष ओली ने कहा कि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश स्वयं उनके द्वारा किए जाने का जो प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। उनका कहना था कि सेना की सुरक्षा में रहने के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को निकास के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश उन्होंने की थी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कंग्रेसमै विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले केन्द्रीय समितिकी समयावधिको नबढ़ाने कि मांग की है। कंग्रेस नेताओं गुरू घिमिरे, मनोजमणि आचार्य, देवराज चालीसे लगायत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि किसी भी हाल में केन्द्रीय समिति की मियाद नहीं बढ़नी चाहिए। उनका आरोप है कि वर्तमान नेतृत्व अनावश्यक ही केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक को लंबा खींचने और नियमित प्रक्रिया में महाधिवेशन न करके नेतृत्व में बने रहने का अस्वाभाविक और लोकतांत्रिक अभ्यास कर रहे हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन आज देश के हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्र में काग तिहार मनाया गया। आज के दिन कौवे को अच्छा भोजन व सम्मान देकर काग तिहार मनाने की परंपरा है। इसके अलावा आज धन्वंतरी जयंती और आरोग्य दिवस भी मनाए गए। नेकपा माओवादी केंद्र महाधिवेशन आयोजक समिति के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि देश की मौजूदा परिस्थिति असाधारण और जटिल है, इसलिए ऐसी कठिन परिस्थिति में पार्टी की भूमिका बढ़ गई है। संयोजक प्रचंड ने कहा कि जेन जेड आंदोलन की मांग भी पार्टी की ही मांग है, इसलिए माओवादी इसका समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं की चाह और भावना के अनुसार पार्टी रूपांतरित होनी चाहिए। सरकार ने नर्सिंग स्वास्थ्यकर्मियों की पारिश्रमिक संबंधी मांग संबोधित करने के लिए समिति गठित की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्राध्यापक डॉ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ के संयोजकत्व में 14 सदस्यों की समिति गठित की गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव विकास देवकोटा के मुताबिक समिति को एक सप्ताह के भीतर प्रारंभिक प्रतिवेदन सौंपना है। तत्काल और दीर्घकालीन रूप में समस्या समाधान के लिए होने वाले कामों के विषय पर सुझाव सहित प्रतिवेदन सौंपने का समिति को कार्यादेश दिया गया है। सप्तरी की बोदे बरसाइन नगरपालिका वार्ड नंबर 8 रजक पट्टी स्थित कबीर बाबा मंदिर के पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मंदिर में पुजारी के रूप में कार्यरत करीब 70 वर्षीय पुजारी राम दुलार साह की अज्ञात व्यक्ति ने शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी। ये जानकारी सप्तरी प्रहरी प्रमुख गौतम कुमार केसी ने दी। बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित रखकर आवश्यक अनुसंधान को आगे बढ़ाया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा में 9 दिन पहले शुरू हुआ सीज फायर आज संकट में पड़ गया जब इसराइल की सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी हिस्से में हवाई हमले किए हैं। सेना का दावा है कि यह कार्रवाई हमास के उन हमलों के जवाब में की गई जो उसके सैनिकों पर हुए थे। हमास ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि वो युद्ध विराम समझौते का पूरी तरह पालन कर रहा है और इसराइल झूठे बहाने बनाकर फिर से हमला शुरू करना चाहता है। बता दें इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गजा में आतंकवादी ठिकानों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। दोनों के बीच सीज फायर का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से 10 अक्टूबर को लागू हुआ था, जिससे 2 साल से चल रहे युद्ध को विराम मिला था। इसराइली सेना ने कहा कि रफा इलाके में सैनिकों पर फायरिंग हुई, जिसके जवाब में वायुसेना ने फाइटर जेट और तोपों से हमला किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दक्षिणी रफा में झड़पें हुई जहां हमास एक स्थानीय गिरोह से भिड़ा था, तभी इसराइली टैंक वहां मौजूद पाए गए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनावी वातावरण बनाने और शांति सुरक्षा की अनुभूति दिलाने के लिए विशेष रणनीतिक योजना के साथ आगे बढ़ने का केंद्रीय सुरक्षा समिति का निर्णय। 14 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में स्वास्थ्य सेवा विभाग की तत्कालीन महानिदेशक डॉ संगीता कौशल मिश्रा समेत 14 लोगों के विरुद्ध अख्तियार ने विशेष अदालत में किया मुकदमा दर्ज। केलाली के धुबेनी नहर में शवयात्रियों को ले जा रहे ट्रैक्टर की दुर्घटना में 3 लोगों की हुई मौत और युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोप में इसराइली सेना ने हमास पर किया हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।